നമോ അർഹന്താടം നമോ സിദ്ധാടം നമോ ആഴരിയാടം നമോ ഉപചായാടം നമോ ലോയ് സവ്യസാഹൂടം മംഗളം ഭഗവാൻ വീരോ മംഗളം ഗോതമോഗണി മംഗളം കുന്ദകുന്ദാത്യോ ജൈന ധർമ്മോസ്തു മംഗളം സർവമംഗല്യമാംഗല്യം സർവകല്യാണകാരകം പ്രധാനാം സർവധർമാണാം ജൈനം ജയതു ശാസനം ജൈനം ജയതു ശാസനം ജൈനം ജയതു ശാസനം തീന ഭുവന മേ സാര തീത രാഗ വിജ്ഞാന കാ ശിവ സ്വരൂപ ശിവ കാ നമഃ പ്രയോഗ സംഹാരികേ സമ്യക് ദർശന കേ സമ്യക് ദൃഷ്ടി കേ ജീവൻ മേ ആഠ അംഗ ഹോതേ ഹൈ ഹം ഉസ് പേ ഡിസ്കഷൻ കർ രഹേ ഥേ ഓർ ഹംനെ പിച്ചലി ബാർ സ്ഥിതീകരണ അംഗ പർ ഭി ബാത് കരി ഥീ സാമാജിക കർവിഷ്ടേ ചിത്തെ നിജ പർ കോ സുബിഡാവേ कामादि का मतलब इसमें इच्छाएं हैं, जो भी हमारी कषाएं बढ़ जाती हैं जब हम दूर होते हैं धर्म से सत्संग से, तो हमारी कषायों में तीव्रता आने लगती है। तो ऐसे अपनी और अन्य साधर्मी की यदि कामादि से यानी कषाय आदि के तीव्र उदय से वृष्टे मतलब वृष मतलब होता है धर्म चिगते यानी कि उससे दूर जाता हो, तो तीव्र कषाय आदि के उदय से स्वयं को निज पर स्वयं को या साधर्मी को पर को तीव्र कषाय के वश होकर धर्म से दूर जाता देखे तो उसको वापस धर्म में उसको वापस दृढ़ कराता है कि नहीं भैया कहाँ जा रहे हो, मार्ग तो ये है, करने योग्य तो ये है। तो इसको स्थितिकरण अंग कहते हैं। ये सम्यक दृष्टि जीवों के होता है और ये अकेली मनुष्यों तक सीमित हो ऐसा नहीं, देवगति के देव भी आते हैं तो वे मनुष्यों को संबोधन करते हैं, देवगति के देव नरक गति में भी जाते हैं संबोधन करते हैं तीसरे नरक तक, और फिर मुनिराज हो तो वे त्रियंचों को भी संबोधन करने आते हैं, और ऐसे ही कोई धर्मात्मा हो तो वे त्रियंचों को भी संबोधन करते हैं। ये ऐसा इसका स्वरूप है। किसी को स्थितिकरण अंग में कोई क्वेश्चन?
नहीं, मुझे तो नहीं है।
राइट, हाँ। तो इसमें मतलब कैसे भी हो हमारा जो भी साधर्मियों का परिवार रहे, हम ये ख्याल में रखें कि सबके मतलब ये छोटे छोटे हमारे शिविर चर्चाएं स्वाध्याय सामूहिक पूजन ये आयोजन होते रहे, जिससे क्योंकि कई लोगों के घर में मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बन जाता है कि हम लोग धर्म से दूर होने लगते हैं, कभी तीव्र कषाय, कभी कोई परिस्थिति ऐसी हो गई, कभी कुछ ऐसा बन गया, कोई परेशानी आ गई, तो हम उसमें इतना उलझ जाते हैं कि थोड़े दिनों के लिए मंदिर और प्रवचन और स्वाध्याय सब छूट जाता है, और फिर यदि वो ज्यादा दिन के छूट जाए तो हम फिर दूर हो जाते हैं। तो इसलिए छोटे छोटे आयोजन थोड़े थोड़े समय में, और जैसे अष्टानी का तो हमारे यहाँ थोड़े थोड़े समय में आ जाते हैं, दशरक्षण पर्व आई जाते हैं, तो हर दो तीन महीने में हमारे यहाँ एक तो त्रैकालिक पर्व आई जाता है। तो ये सब बहाने हैं कि हम सभी धर्म से जुड़े रहे, इनके आयोजन होते हैं तो हम इसी बहाने धर्म से जुड़े रहे, तो हमको इससे जुड़े रहने प्रयत्न करते रहना चाहिए। अब 13वां छंद है, इसी स्थितिकरण अंग को थोड़ा आगे एक्सटेंड करता हुआ अगला अंग है। धर्मी सो गोवच्च प्रीति सम करण जिन धर्म दिपावे इन गुण ते विपरीत दोष वसु तिनको सतत के पावे। 13वां छंद है। धर्मी सो यानी धर्मात्माओं के प्रति यानी साधर्मियों के प्रति गोवच्च प्रीति सम, गौ यानी कि गाय काउ और वंश मतलब उसका बछड़ा काफ, राइट, तो गाय और उसका जो बछड़ा उसका जो बच्चा होता है, तो गाय को अपने बच्चे के प्रति बहुत प्रीति होती है, बहुत प्रेम होता है, लेकिन वह प्रीति कैसी होती है, अकारण होती है, निर्वांशक होती है, सेल्फिश नहीं होती वो, एकदम कुछ प्रयोजन नहीं है उसका। तो जैसे गाय को अपने बछड़े के प्रति, अपने बच्चे के प्रति प्रीति होती है, ऐसा धर्मी को, सम्यक दृष्टि को साधर्मियों के प्रति प्रीति होती है। कैसी? निर्वांशक। उससे इसलिए प्रीति नहीं है कि मुझे कुछ इससे फायदा होगा या मुझे इसमें कोई रिटर्न में मिलेगा, ऐसा कुछ भी उसके मन में नहीं रहता। इसको बोलते हैं वात्सल्य अंग। क्या? क्योंकि एक तो उसके निकांक्षित अंग पहले हो गया, तो उसको वैसे ही कुछ संसार में आकांक्षा नहीं है, और दूसरा उसके निशंकित अंग है, तो उसके इस जगत में शंका है ही नहीं कि कोई दूसरा कुछ दे सकता है। उसको तो पता है कि उसका जो कुछ भी है वह स्वयं से ही आना है, और यदि कोई देने वाले भी है तो वे देवशास गुरु की शरण में सारी चीजें मिल ही जाती है दुनिया में। क्योंकि इस जगत के व्यवहार से देखे जाए तो कल्प वृक्ष, शरण, उत्तम मंगल चार ही है, अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, साधु परमेश्वर, उनका बताया गया जिन धर्म। तो उसको जगत में किसी अन्य से कुछ याचना करना या कुछ अपेक्षा रखना या कोई स्वार्थ रखना, ये वाली भावना तो बची नहीं। लेकिन हाँ, उसकी ये भावना जरूर है कि देखो, हम सभी यहाँ एक साथ एक ही देव की आराधना करते हैं, एक ही तत्व का अभ्यास करते हैं, तो कितना सुंदर हो कि हम सभी साथ में आराधना करके साथ में मोक्ष सिद्धि शिला में पहुंचे। इस कारण साधर्मियों पर सम्यक दृष्टि जीवों का अनुराग बहुत होता है, बहुत परिवार से ज्यादा बड़ा अनुराग साधर्मियों का हमारे चरणारविंद के शास्त्रों में कहा जाता है। साधर्मियों को कल्प वृक्ष की उपमा देते हैं और बोलते हैं जितना परिवार से प्रीति होती है उससे भी कई गुनी ज्यादा साधर्मियों के प्रति प्रीति ज्ञानियों को होती है। बराबर वात्सल्य कैसा? कि वात्सल्य अंग की तो कितनी सारी कथाएं भी फेमस है। विष्णु कुमार मुनिराज वे तो अपवाद है। क्या? कि मुनिराज के योग्य कार्य नहीं था, और फिर भी मुनिराज ने जब जाना कि गृहस्थ भाई अपना काम ही नहीं कर रहे, उनके स्वयं के भाई ऐसा कार्य कर रहे हैं और राज्य सौंप कर बैठ गए हैं, तो वे सबसे पहले तो विष्णु कुमार मुनिराज अपने भाई के पास गए और बोला, भैया ये क्या चल रहा है तुम्हारे राज्य में? तो उन्होंने बोला, नहीं भैया हमने तो वचन दे दिया। तो उन्होंने बोला, ये कोई वचन दिए जाते हैं? ये वचन देने का बहाना देकर तुम ऐसे बैठे रहो? पर फिर वे स्वयं गए और उन्होंने स्वयं अपना दीक्षा छेद किया और उन्होंने रूप देखो कितने कितना उनको उनकी विक्रिया थी, तो वे मुनि पने में भी ये कार्य कर सकते थे। विष्णु कुमार मुनिराज मुनिराज रहकर भी उपसर्ग दूर कर सकते थे, बराबर, और उससे तो और बढ़िया होता। उससे तो ये होता कि देखो जैन मुनि कितने ताकतवर होते हैं, कितनी सारी विक्रियाओं को कर सकते हैं, अन्य मत के लोग भी देखते ना, तो उनकी मुनिराजों की कितनी प्रसिद्धि होती, देखो उन्होंने इतना बड़ा रूप बनाया, राइट। लेकिन उनका विवेक कितना जागृत है कि देखो मुनि दशा कोई चमत्कार दिखाने की चीज नहीं है, और ना ही मुनिराज की दशा की कोई महिमा इसलिए है क्योंकि वे विक्रियाएं कर सकते हैं, नहीं, मुनिराज की महिमा तो उनकी वितरागता के कारण है, उनकी निष्प्रभता के कारण, उनकी तीन कषाय चौकड़ी के अभाव के कारण जो अंतरंग आनंद की अनुभूतियां वे धारा फूटी हुई है उनके अंदर, उसके कारण मुनिपना है, वो मुनि दशा है। बाहर में कितनी उनकी रिद्धियां प्रकट हुई, ये सब तो उसका एक बाय प्रोडक्ट है, ये तो है, ये जगत को दिखाने की और इससे जगत को प्रभावित करने की मुनिराज की प्रवृत्ति नहीं होती। प्लस दूसरी बात कि ये जो बचाने का काम है, प्रीति का काम है, ये साधर्मी गृहस्थ जीवों का है, तो यदि उनको सीख देनी है तो उनका तो भेष बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने दीक्षा छेद किया श्रावकों का रूप धारण किया और फिर उस वात्सल्य अंग में वे प्रसिद्ध हुए कि साधर्मियों का काम है कि वे ये सारे एक दूसरे के कष्टों का निवारण करें, मुनिराजों के उपसर्गों को भी दूर करें, आपसी मतभेदों को, आपसी पीड़ाओं को, कष्टों को भी दूर करें। बराबर ये हाँ। वात्सल्य मुनिराज मतलब वो विष्णु कुमार मुनिराज का वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध हो जाना ये अपवाद है कि मुनिराज का काम है, इसलिए उन्होंने गृहस्थ वेश धारण किया, उपसर्ग दूर किया और एक आदर्श स्थापित किया और फिर वापस छेदोपस्थापना संयम धारण करके पुनः दीक्षित हुए और फिर मोक्ष में गए। ऐसे ही दीवान अमरचंद बराबर उनको पता पड़ता था किसी के यहाँ कोई परेशानी है तो कितना उनका विवेक के दूसरे को पता नहीं पड़ता था कि ये मदद उन्होंने करी और उसकी आवश्यकता को पूरा कर देते थे, क्योंकि यदि मेरी मदद करेंगे आप और फिर हमको वापस स्वाध्याय सभा में मिलना है तो स्वाध्याय से कहाँ होगा, हम तो आपको धन्यवाद ही देते रह जाएंगे या फिर हमारे अंदर हीन भावना आ जाएगी कि नहीं नहीं ये तो इन्होंने हमारा उपकार किया, मुश्किल समय में हमारी मदद करी, राइट। तो फिर वो साधर्मियों एक आंख से आंख मिलाने वाली बात में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो ज्ञानी जन इतना सोचते हैं कि एक तो सामने वाले का कष्ट दूर हो और हमें उसको कोई ठोक पीट कर बताना नहीं कि नहीं मैंने मदद कर दी, देखो तुम्हारी मुश्किल थी मैंने दूर कर दी, तो ये वाली उनका ये मान होता नहीं है। तो ये सब वात्सल्य अंग की प्रगटता में जीवन में ज्ञानी जीवों के देखा जाता है।
अनुभव जी कल भी हमारे वो शौक आचार चलते हैं उसमें वो दीवान अमरचंद की वो थोड़ा वो आया था, उन्होंने श्रेणी की ने बोला था, परंतु वो दीवान अमरचंद की उसका लाइक आई नो नथिंग अबाउट हिम, तो थोड़ा सा उसके वो बताएंगे उसका वो कौन थे, कहाँ कैसे क्या थे?
जैन धर्म की कहानियां जैन धर्म की कहानियां करके बहुत सारी हमारे यहाँ पहले ब्रह्मचारी हरिभाई जी संपादन करके निकालते थे। उसके बाद जब ब्रह्मचारी हरिभाई जी चले गए तो उसका एक और संस्करण निकला था, तो उसके एक भाग में पूरा दीवान अमरचंद जी का नाटक ही है, पूरी वो पूरी उनकी कहानी उसका बहुत सुंदर नाटक है। तो वे जयपुर के ही दीवान थे शायद और बहुत धर्मात्मा और बहुत दीवान मतलब पूरे क्या बोले मतलब पूरे स्टेट का कैश और उसका पूरा कलेक्शन वो देखते थे, राइट। तो ही वाज वेरी रिच और बहुत धर्मात्मा थे, तो उस समय बहुत सारे प्रॉब्लम भी चलती थी, तो और आई थिंक उस टाइम अंग्रेज लोग भी आ गए थे, राइट।
तो ये
तो यहाँ पर इंडिया में
200 साल
हाँ 200 अभी बस 150-200 साल पुराने ही है ये सब।
अच्छा।
वो उनको उनके बारे में ऐसी कहानियां प्रसिद्ध हैं कि जैसे कि किसी के घर पर बहुत पैसों की जरूरत है, जैसे किसी को शादी करनी और पैसे नहीं है और वो इतने स्वाभिमानी लोग होते थे कि वो मानते तो थे नहीं और किसी को पता भी नहीं पड़ने देते थे कि ऐसे है, मतलब पहले के लोगों में बहुत वो रहता था कि नहीं हम किसी से कैसे मांग ले, हम नहीं मांगेंगे ऐसे करके। तो उनको यदि पता पड़ जाता था तो वो कैसे भी जैसे कि किसी के घर मिठाइयां पहुंच गई कहीं से भी तो लड्डुओं के अंदर सोने की अशर्फियां रख दी, तो मतलब पता भी नहीं पड़ा उसको कि नहीं, और लोगों को भी दूसरों को भी नहीं पता पड़ा कि इनकी मदद किसने करी और उसके पास वहां पर पहुंच गई उसकी मदद। तो इस कारण वो बहुत ही उदार चित्त वाले इसलिए भी प्रसिद्ध हैं और फिर उनकी बाद में मृत्यु भी ऐसे ही हुई, तो जिसकी उन्होंने मदद करी थी उसने मतलब वो बहुत बड़ी कहानी है उसकी अलग। तो एक इनके जो वहां पर अंग्रेज के गवर्नर आए थे तो इनका ये तो कोषाध्यक्ष के ना मतलब दीवान थे तो उनके पास बैठना होता था, तो इनके घर से वह बाहर निकला बैठने के लिए आया था और ये लोग अच्छी वो इनसे मतलब वो जानते थे ही जैन धर्म में है तो उनसे वो अध्यात्म की बातें सुनने आता था राइट इंग्लिश मैन जो भी गवर्नर था वहाँ का तो वो इनके घर से रात को निकला और निकला तो रास्ते में उसको किसी ने गोली मार दी वो मर गया। तो फिर इनके ऊपर आरोप आ गया कि इन्होंने उनको मरवा दिया। तो फिर ऐसा करके तो और वो उसने मारा था जिसकी इन्होंने साधर्मी की मदद करी थी राइट। तो फिर पूरी समाज उस पर चढ़ गई कि तुम बोलो कि तुमने मारा तुमने मारा तुमने मारा। लेकिन तब तक इन्होंने इन्होंने बोल दिया था कि हाँ मैंने मारा क्योंकि इनको पता पड़ गया था किसी साधर में नहीं किया ये काम। तो फिर सब मनाते रहे नहीं 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 पर उन्होंने उन्होंने अपना अपराध क्योंकि उनको पता था कि ठीक है अभी ऐसा होगा तो कुछ युद्ध छिड़ जाएगा राज्य में तो उस राज्य के लिए फिर उन्होंने नहीं बोला और स्वयं वो दंड ले लिया। ऐसे करके पूरा बहुत सुंदर नाटक है जैन धर्म की कहानी।
थैंक यू।
बाकी इनका
कल इसके वो दान का प्रसंग था तो उसमें कल भी हमने वो पढ़ा था कि वो किसी के कहाँ शादी होती है तो उसको मदद करते किसी के कहाँ जहाँ शास्त्र पढ़ने जाते तो शास्त्र में पैसा रख देते थे वैसा वो बोलते थे कल।
करेक्ट 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 बहुत बहुत उदार चित्त वाले थे और बहुत ही विनयशील नम्र उनके इसलिए भी प्रसिद्ध है। ऐसे भामाशाह दान में प्रसिद्ध हुए उन्होंने महाराणा प्रताप के युद्ध को पूरा फंड किया था। वो जैन थे और अभी तक के इंडिया के इतिहास में सबसे बड़े दानी कहे जाते और एग्जिस्टिंग राजस्थान गवर्नमेंट की पॉलिसी चलती है भामाशाह के नाम पर। तो और आप यदि राजस्थान में जाओगे और भामाशाह का नाम आपको हर कहीं मिलेगा बस स्टैंड में कहीं भी पॉलिसीज में कहीं उनके गेट्स बने हुए हैं। उन्होंने मतलब ही लिटरली सिंगल हैंडेडली फंडेड द कंप्लीट बैटल उनका महाराणा प्रताप का एंड ही वाज लाइक वो बहुत ज्यादा तत्वज्ञानी अभ्यासी थे। तो मतलब जैनों ने देशभक्ति पर इंडिपेंडेंस के बैटल पर बहुत ज्यादा संग्राम किया क्योंकि हमारे चरणों के शास्त्रों में आता है कि यदि देश पर विपत्ति हो तो हमको हमारी जिम्मेदारी से वहां पर पूरा सहयोग करना चाहिए क्योंकि यदि देश ही नहीं बचेगा तो फिर धर्म का पालन क्या होगा। बराबर से स्पष्ट अपने नीति शास्त्रों में है चरणानुयायियों के शास्त्रों में है। तो जैनियों ने बढ़ चढ़ कर यदि आप यदि उठाकर देखेंगे बैटल जितना हमारे इंडिपेंडेंस का हुआ तो उसमें तो कितना जब इतिहास के अपन ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमारे जैन महापुरुषों के बारे में पढ़ते हैं तो कितने सारे लोग पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री इवन वो भी स्टार्टिंग में उन्होंने पूरा एक्टिव रहे इन सब के पीछे जब पूरा चलता था उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया ये किया फिर बाद में इंडिपेंडेंस हो गई तो अभ्यास में लगे। बट कितने लोगों का इसमें योगदान है और जो कि बहुत अच्छे तत्वज्ञानी तत्वज्ञानी थे। तो ये सब क्योंकि वो बहुत विचार करते थे कि यदि ऐसा नहीं होगा यदि हम ये नहीं करेंगे तो फिर हमारे ही मंदिर तो जाएंगे हमारी ही सभाएं तो चलना बंद होंगी। तो ये सब वात्सल्य के ही अंदर आता है कि कोई भी विपत्ति हो कोई भी तो ज्ञानी जन सम्यक दृष्टि वे पूर्व में ही उसको दूर से भाप जाते हैं और फिर वे उससे कैसे साधर्मी बचे। जैसे बहुत सारी कहानियां फेमस है कि बोल दिया यानी कि एक राजा ने बोला कि जैनों को पकड़ पकड़ के मतलब पकड़ के लेके आ जाओ तो भाई सब घबरा गए। तो उन्होंने बोला हम कैसे जाने कि जैनियों का कौन सा घर है तो बोले जहां पर रात में चूल्हा नहीं जलता हो वहां पर उनको वो जैन होंगे तो उनको पकड़ के ले आना ऐसा आदेश हो गया। तो हमारे विद्वानों ने सभाएं करी और बोला भैया रात को सब अपने अपने भोजन बनते हो सारे घरों में तो अपने अपने घर में सब दिया वगैरह जला के रखना और बर्तनों को ठोकने की आवाज करना। अब खाना तो अपन बनाते ही नहीं लेकिन बचने के लिए कुछ तो काम करने पड़ेंगे। तो ऐसा करके तो फिर रात को वो बर्तनों की आवाज आती थी जिससे लोग बच पाए। अब ये युक्तियां हैं अब इसको आप छल बोल सकते हो मायाचारी बोल सकते हो कुछ भी लेकिन ये वात्सल्य है। जो अधिक बुद्धि वाले लोग होते हैं वे ऐसे युक्तियां निकाल कर कि कैसे भी बचे। फिर ऐसे ही पकड़ लिया गया एक बार कि जैन लोग गाय को नहीं पूछते हैं तो टोडरमल जी ने बोला भाई आप सब शांत रहना, हम बात करेंगे। सारे जैनियों को पकड़ के बंद कर दिया गया। तो फिर टोडरमल जी को बुलाया गया, बोला भैया ऐसी ऐसी शिकायत मिल रही है, गाय सबकी माता है, उसमें इतने देवता होते हैं, आप उसको नहीं पूछते हो। तो उन्होंने बोला अरे आपने, आपसे ऐसा किसने कह दिया, गाय को तो सच में जैन ही पूछते हैं, उसकी इतनी सेवा करते, कहते कैसे करते हो। कह रहे जब सारी दुनिया गाय को शाम को बंद करके बांध देती है घर के अंदर, तो हम जैनियों को इतना बुरा लगता है, तो हम सब उसी दुख में दर्द में खाना पीना छोड़कर बैठ जाते हैं। सुबह जब वो खुलती है बंधन से और उसको भेजा जाता है, हम तभी भोजन करते हैं। तो राजा भी चक्कर में पड़ गए। और ऐसी अलग अलग युक्तियों से भी, अलग अलग युक्तियों से कैसे भी बने, अपने धर्म को बचा कर, यानी कि रात्रि भोजन करना शुरू नहीं करेंगे, लेकिन बर्तन तो बजा सकते हैं रात में, राइट। गाय को पूजना शुरू नहीं करेंगे, लेकिन सही है, अब इतनी सारी मूक गायों को रात में बांध दिया जाता है, तो हम लोग भोजन छोड़ देते हैं कि भाई बताओ अभी जब मुक्त होगी हम तभी भोजन करेंगे। तो इन युक्तियों से जैसे बने तैसे तो सारे जैनों को फिर रिहा कर दिया गया कि नहीं ये लोग तो बिना, मतलब राजा ने मंत्रियों से पूछा कि जैन लोग सच में रात में नहीं खाते, उससे बोला हाँ बात तो सही है। तो राजा ने बोला अरे ठीक है फिर इनको छोड़ दो। तो इस तरीके से ये सारे अलग अलग बात सुनने के तरीके, कैसे कोई बड़ी विपत्ति आए और उस पर कैसे समाधान से, कैसे जिससे धर्म न रुकता हो उसको बचा लिया जाए, ये सब आप यदि पढ़ेंगे वात्सल्य का स्वरूप देखना है तो टोडरमल जी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी और उसके पहले दो पैराग्राफ कितने वात्सल्य पाकिस्तान से, उस समय तो भारत ही था वो, बट पाकिस्तान की आज वो जगह पाकिस्तान में से, वहां से वो चिट्ठी, तो कैसे कैसे सुंदर उसके, मतलब एक एक शब्द कैसा वात्सल्य से भरा हुआ। तो ये टोडरमल जी का ऐसे ही उसी समय जो इंद्रध्वज मंडल विधान हुआ था, टोडरमल जी ने कराया था, कितना बड़ा विद्वान, उसकी ब्रह्मचारी रायमल जी ने पत्रिका लिखी थी, अब वो पत्रिका आज एक ग्रंथ जैसी बन गई है, इतनी प्यारी पत्रिका आपकी आंखों में आंसू आ जाए, मतलब कैसी, तब तो गाड़ियां नहीं थी, फ्लाइट नहीं थी, ट्रेन नहीं होती थी, लोग बैलगाड़ियों पर चलकर आते थे, और यदि उनको कहीं भी जाना है तो एक एक महीने पहले निकलना पड़ता था, राइट। यदि किसी साउथ वाले के ऊपर जयपुर तक आना है तो उसको 15-20-30 दिन पहले पूरा निकलेगा, वो अपना बाजार में खाते नहीं तो पूरा राशन रख के लेके आएगा, तब तक का पूरा घर का खाना पीना, पूरा उनकी सारी सामग्री जितने लोग आ रहे हैं, तो मतलब सरल काम नहीं होता था यात्रा करने का। ऐसे शिखर जी लोग जाते थे तो पूरा, मतलब पूरी विदा होती थी प्रॉपर, भाई ये जा रहे हैं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि तीर्थ यात्रा करना पहले बहुत बड़ी बात होती थी, बराबर। तो ये सब, तो जब आप इन चिट्ठियों को पढ़ते तो आपको पता पड़ेगा कि कितना अंदर इनके वात्सल्य, कितना साधर्मियों से प्रीति, मतलब ज्ञानियों का अंतरंग कुछ अलग ही होता है। मैं 2 मिनट रहस्यपूर्ण चिट्ठी को आपको थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ, उसके स्टार्टिंग का क्या शब्द है उसमें। श्री मुल्तान नगर महाशुभ स्थान में साधर्मी भाई अनेक उपमा योग्य अध्यात्म रस रोचक भाई श्री खानचंद जी, गंगाधर जी, श्रीपाल जी, सिद्धार्थ दास जी, अन्य सर्व साधर्मी योग्य लिखी टोडरमल के प्रमुख विनय शब्द अवधारण करना, या पहले तो उनके प्रति विनय कि मेरे विनय शब्द अवधारण करना, देखो कितने सुंदर शब्द हैं। यहाँ यथा संभव आनंद है, जहाँ हम हैं यहाँ पर लिखते ना कि यहाँ तो सब बढ़िया है, आप बताओ, यहाँ यथा संभव आनंद है, तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। या हमारे तो जितना कर पा रहे हैं हम यथासंभव पूरे पुरुषार्थ से आनंद भोग रहे हैं, आपकी भी चिदानंद यानी अपने स्वरूप, अपने आत्मा, अपना चैतन्य प्रभु, उसके अनुभव से सहजानंद की वृद्धि हो, ऐसी हमारी कामना है। कितनी सुंदर भावना पहले ही, मतलब अप्रिंच तुम्हारा एक पत्र भाई जी श्री राम सिंह जी भवानी दास जी पर आया था, उसके समाचार जहानाबाद से मुझको अन्य साधकों ने लिखे थे। अब आप समझो ये वो जमाना है जब कोई टेलीग्राम नहीं होता, व्हाट्सएप वगैरह तो जाने दीजिए, मेल वगैरह, वहां कोई पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था नहीं है। कहीं से कोई लिखता होगा, कोई वहां से निकल के आता होगा तो उसको पकड़ाते होंगे, पता नहीं कैसे व्यवस्था बनती होगी, और एक पत्र कब लिखा जाता होगा और कब पहुंचता होगा। बराबर राजाओं के तो क्या होते थे, वो चल होते थे घोड़े पर बैठकर लेके जाते थे संदेश को। अब सामान्य आदमी को यदि पत्र पहुंचाना हो तो वो किसको पहुंचाए। बराबर, तो देखिए इन्होंने मुल्तान नगर से जहानाबाद में किसी को पत्र लिखा, उन्होंने उस पत्र को जाना, देखा तो उनको बहुत गंभीर लगा और उनको लगा कि यार इसका उत्तर तो हमको नहीं बनेगा। तो अब देखो कितना, अब छोड़ सकते थे पत्र को, लिख देते भैया हमको नहीं पता, लेकिन अब इनको पता था कि इस पत्र का उत्तर तोडरमल जी देंगे, वो बहुत विद्वान है, तो उन्होंने वहां से उनको दूसरा पत्र लिखा इस पत्र के बारे में। अब साधर्मियों का कैसा, आपस का कैसा, एक दूसरे का, एक को शंका हुई वो दूसरे से बोलता है, दूसरे को समाधान नहीं पता वह तीसरे से पूछता है, तीसरे को पत्र लिखता है क्या। सो अप्रिंच तुम्हारा एक पत्र भाई जी श्री राम सिंह जी भवानी दास जी पर आया था, उसके समाचार, उस पत्र के समाचार जहानाबाद से मुझको अन्य साधर्मियों ने लिखे थे, मुझ पर सीधा पत्र नहीं आया।
हाँ।
मुझे उस पत्र के समाचार, मेरा आपसे कोई परिचय नहीं, आपने मुझको पत्र नहीं लिखा, आपने मुझसे पूछा नहीं, फिर भी चूंकि साधर्मी साधर्मी का रिश्ता है ना, तो देखो कितने अधिकार से उन्होंने ये पत्र उनको लिखा जिन्होंने इनसे पूछा ही नहीं। मतलब आप मुझसे ना पूछो, आप किसी और से पूछो, और मेरा आपसे कोई परिचय नहीं, और मैं जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान, ये कैसी बात थी कि साधर्मियों में ऐसा नहीं चलता, यहाँ कोई जान पहचान की बात ही नहीं है। अरे जब बताओ भरत जी को, मतलब राम जी चार भाई थे ना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो भरत जी को जो त्रिलोक मंडन हाथी है, उस हाथी को देखकर अत्यंत तो प्रीति हुई। अब हाथी तो कोई उनका भाई नहीं लेकिन पूर्वभव का मित्र है, तो उन्होंने हाथी को अपने पास रखा और दोनों अत्यंत वैराग्य से रहते थे, हाथी ने भी व्रत ले रखे थे श्रावक के, तो उनकी कितनी प्रीति थी। ऐसी कोई अपनी पहचान हो और प्रीति हो ऐसा नहीं होता, साधर्मीपना है, जिसके धर्म में यदि हम रुचि देखते हैं उससे अकारण ही प्रीति हो जाती है। देखो देखो आप कितना सुंदर लिख रहे हो, सो भाई जी ऐसे प्रश्न तुम सरीखे ही लिखे। अब कोई हम नहीं जानते वे जीवन में क्या आजीविका करते हैं, उनकी क्या, कैसे दिखते हैं, क्या उनका पहनावा है, हमें कुछ नहीं पता, मात्र हमने उनका पत्र पढ़ा, और देखो टोडरमल जी क्या बोल रहे हैं, मानो उनको पूरा जानते हो। सो भाई जी ऐसे प्रश्न तुम सरीखे ही लिखे, इस वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े है, धन्य है जो स्वात्मानुभव की बात भी करते हैं। यही कहा है तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता निश्चितम सा भवेत भव्यो भावि निर्वाण भाजिनम। जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से इस चेतन स्वरूप आत्मा की बात भी सुनी है वह निश्चय से भव्य है, अल्प काल में मोक्ष का पात्र है। सो भाई जी तुमने प्रश्न लिखे उनके उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखते हैं सो जानना, और अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र शीघ्र दिया करें, मिलाप तो कभी होगा तब होगा, और निरंतर स्वरूपानुभवन का अभ्यास रखोगे जी श्री रस्तु। अब देखिए जिससे परिचय नहीं उसके प्रति कैसा कैसा उसके उपकार उसके हित की भावना, कितने सुंदर वचन, मतलब अपन को कोई ऐसे लिख के भेजे तो कितना कैसा लगे हमको, क्या मतलब ये तो आशीर्वाद है और क्या है, यही तो धर्म का स्थिति करे है। और अपन जब वो वैराग्य पाठ पढ़ते हैं, वैराग्य भावना, ये विधि राज करे नर नायक भोगे पुण्य विशाला, सुख सागर में रमत निरंतर जात न जान्यो काला, एक दिवस शुभ पुण्य संयोगे क्षेमं कर मुनि वंदे।
हाँ।
तो क्या हुआ, पार्श्वनाथ भगवान का पूर्व भव का जीव, पार्श्वनाथ भगवान की ना यह शांति पार्श्वनाथ भगवान का पूर्व भव का जीव चक्रवर्ती वज्रदंत बराबर, वो चक्रवर्ती जंगल में गए और जंगल में देखा कि मुनिराज है, क्षेमंकर मुनिराज सॉरी, और मुनिराज को देखा तो सामने बिल्कुल सब उतर गए, धूल पर आ गए, उनको नमस्कार किया और धूल पर बैठ गए। चक्रवर्ती मुनिराज, मुनिराज से बड़ा कौन है दुनिया में, कौन चक्रवर्ती उनके सामने, तो मुनिराज के सामने धूल पर बैठ गए, नमस्कार किया। मुनिराज ध्यान के बाहर आए और मुनि उपदेशो धर्म शिरोमणि, मुनिराज ने बोला धर्म वृद्धि रस्तु, इतना बोला मुनिराज ने। मुनिराज ने आंखें खोली, सामने देखा कि चक्रवर्ती बैठा है और मुनिराज ने क्या बोला, मुनि उपदेशो धर्म शिरोमणि, मुनिराज ने सिर्फ इतना बोला कि धर्म वृद्धि रस्तु। और यहाँ राजा ने सुना, चक्रवर्ती ने सुना कि अरे मुनिराज मुझ पापी को धर्म शिरोमणि कह रहे हैं, धर्म का राज, धर्म का मतलब ठेकेदार ऊंचा शिरोमणि कह रहे हैं, वो शर्म से नीचे गड़ गया। मुनि उपदेशो धर्म शिरोमणि सुन राजा वैरागे, राज रमा वनितादिक जे रस ते रस बेरस लागे। कि जैसे मुनिराज ने बोला कि भाई तुम धर्म शिरोमणि हो, एक तो वे राजा शर्म से और दूसरे वैराग्य से हिल गए कि भाई बताओ हमने कहां अपना काल यहाँ पर बिता दिया, हमने फिर वो जो संसार के स्वरूप का विचार करते हैं वो तो हमको बिल्कुल मतलब पढ़ लेनी चाहिए हमें थोड़े थोड़े दिनों में, वैराग्य भावना तो बहुत ही सुंदर भावना है, इस संसार महापन भीतर भ्रमते और न आवे, बहुत बहुत वैराग्य में वो लिखा हुआ है। वो क्या विचार करते हैं उसके, मुनिराज ने कुछ उपदेश नहीं दिया, मुनिराज ने बस धर्म शिरोमणि बोला और वे अंतरंग विचार में ही ऐसा डूबे। और फिर वे मुनिराज को नमस्कार कर दीक्षा की याचना करते हैं, उनका छोटा सा पुत्र शायद गर्भ में ही पुत्र रहता है, उसको राज्याभिषेक देते हैं और दीक्षा ले लेते हैं। मतलब ये मुनिराज तो ये चर्चा आती है, मुनिराज का भी आपसी वात्सल्य कैसा होता है, मुनिराज आपस में कैसा संवादन करते हैं, बहुत सुंदर चर्चाएं आगम में आती है। देखिए मुनिराज गृहस्थों से संवादन करते कि नहीं करते, ये प्रश्न किया गया आगम में, मुनिराज गृहस्थों से बोलते कि नहीं बोलते, तो उन्होंने बोला मुनिराज के गृहस्थों से संवाद निषिद्ध है, वे बातें नहीं करते फालतू की गृहस्थों से, लेकिन इसके अपवाद है, मुनिराज गृहस्थों से कब बात कर सकते हैं, कि यदि कोई मुनिराज रोगी हो बीमार हो तो उनके समाधान के लिए वे गृहस्थों को बता सकते कि देखो इनको शीत है, इनको आहार ऐसा दे दिया ना, वो मुनिराज को पता नहीं पड़ता, लेकिन गृहस्थ मुनिराजों का मुनिराजों के प्रति का वात्सल्य इतना है कि वे अपने लिए नहीं, अपने लिए होगा तो नहीं बताएंगे, उसका तो निषेध है उनको, पर सागर में मुनिराज की यदि किसी को कोई पीड़ा हो तो तत्संबंधी गृहस्थों को भी बता देते हैं, या कोई उपसर्ग आया हो, जैसे कि विष्णु कुमार मुनिराज को ऐसे ही तो पता पड़ा, दूसरे मुनिराजों ने देखा तो पता पड़ा अरे वहां पर उपसर्ग आया हुआ है, तो कहीं उपसर्ग आया हो तो गृहस्थों को बता देते हैं कि भैया वहां उपसर्ग आया, मुनिराज थोड़ी उपसर्ग दूर करने का काम करेंगे, वो मुनिराजों का काम थोड़ी है। मुनिराज गृहस्थों को बता देते हैं कि वहाँ उपसर्ग आया है। तो ये मुनिराज का मुनिराजों के प्रति का वात्सल्य है, धर्म के प्रति का वात्सल्य है। कहीं धर्म की अप्रभावना होती हो तो मुनिराज बता देते हैं गृहस्थों को, क्या कर रहे हो भैया, इससे कैसी अप्रभावना हो रही है। तो ये इसके अपवाद है, मुनिराज गृहस्थों से बात नहीं करते। नहीं तो मुनिराजों के गृहस्थों से बात करना स्पष्ट आगम में इसका निषेध है। अरे मुनिराज
मुनिराज गृहस्थों से बात नहीं करते मगर गृहस्थों को उपदेश देते हैं ना।
उपदेश देना अलग है, बात करना अलग है। उपदेश भी गृहस्थों के पूछने पर देते हो ऐसा नहीं है।
बातें में संसारिक बातें आ गई ना।
बिल्कुल नहीं, उपदेश भी गृहस्थ पूछे और मुनिराज दे रहे ऐसा नहीं है। 700 मुनिराजों का संघ है, पूरा उज्जैनी नगरी में आया। उज्जैनी पूरी धर्मात्माओं की नगरी, और उसके आचार्य अकंपनाचार्य ने बोल दिया कि कोई एक उपदेश नहीं देगा। अब मुनिराज लोग आए हो 700 और कोई एक मुनिराज धर्म का उपदेश नहीं देता, इतने सारे जैनियों की नगरी है वो। बताओ कैसा लगता होगा, अरे मुनिराज तो उपदेश ही नहीं देते। अरे मुनिराजों का काम उपदेश देना थोड़ी है, ज्ञान ध्यान तपो रखता है। वे तो ज्ञान ध्यान और तप की आराधना करते हैं, योग्य पात्र को जाने तो उपदेश दे देते हैं, लेकिन उसके पूछने पर देते हो ऐसा नहीं। वे स्वयं यदि अपने ध्यान से निकले और सहज में परिणाम बने तो देते हैं। मुनिराजों के प्रोग्राम नहीं बनते कि मेरा 7-8 वहां प्रवचन होगा। मुनिराज के जब ध्यान और ज्ञान से फुर्सत मिले और कषायों की वैसी तीव्रता हो तो उपदेश देते हैं। संचलन कषाय के मंद उदय में उपदेश नहीं होता, तीव्र उदय में होता है। बराबर, तो कषाय यदि तीव्र हो संचलन तो उपदेश होता है, नहीं तो मंद में तो तत्व विचार करते हैं, समाधान करते हैं, ग्रहण करते हैं, आलोचना सामायिक स्तुति करते हैं, शास्त्र गुरु स्थान में जाने की तैयारी करते हैं। ये कार्य मुनिराज के होता है। बहुत जैसे कि आरेकाओं से संवादन नहीं होता, क्या यदि कोई मुनिराज के पास आरेका, आरेकाओं का आना मुनिराज के पास निषिद्ध है। यदि कोई अकेली आरेका आएगी तो मुनिराज के पास नहीं आ पाती। तो कैसे आएंगी कि सबसे पहले तो आरेका अकेले नहीं रहते, वो समूह में रहनी चाहिए आरेका। अकेली एक आरेका का होना निषिद्ध है, तो 2-4-8 ऐसे संघ जितने भी हो उसकी आरेका होती है, और उसमें से एक गढ़नी आरेका होती है। उसका क्या स्वरूप है गढ़नी आरेका का, कि जो वृद्ध हो, बड़ी हो, ज्ञान में भी और दीक्षा में भी, उम्र में नहीं दीक्षा में, कितने वर्षों से वे आराधना में लगी हुई है, वो प्रमुख आरेका बड़ी आरेका हुई। अब यदि किन्हीं आरेका को कोई शंका है तो वे गढ़नी आरेका से जाकर कहेंगी। गढ़नी आरेका उन आरेका को लेकर, अकेले नहीं, उन आरेका को लेकर मुनिराज के पास जाएंगे और उनसे दूर खड़े रहकर 5-8 की दूरी आचार्य से दूर खड़े रहे, मतलब बहुत दूर रहकर आचार्य को देखकर नहीं, जमीन पर दृष्टि रखकर, जिनको प्रश्न है वो वाली आरेका नहीं, जो बड़ी आरेका है वो, वे आचार्य से अत्यंत विनीत होकर प्रश्न करेंगी। आचार्य भी अपने शरीर को संकुचित करके, मतलब अपने शरीर को संकोच करके, वे भी जमीन पर देखते हुए, आरेका को ना देखते हुए, उसका समाधान बहुत सीमित शब्दों में देंगे। लंबा समाधान नहीं देंगे, इशारा करेंगे कि इसका ऐसा 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 है, और तुरंत जैसी समाधान मिलेगा वैसी आरेका वापस चली जाएंगी, वहां रुकेंगी नहीं। इतना कड़क अनुशासन आचार्य और आरेकाओं के प्रति है, तो सामान्य घर स्त्रियों से आचार्य क्या बात करेंगे। तो ये सब अनुपालन मुनिराजों के, मतलब जो भी संभाषण यदि होगा तो गृहस्थों को तो मुनिराज जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक मानते हैं। जंगल में रहने में उनको कुछ नहीं होता, नगर में नहीं रुकते वे ज्यादा। तो फिर भी यदि किसी मुनिराज पर उपसर्ग हो या कोई रोग आदि हो तो इतना वात्सल्य इतनी प्रीति है कि वे गृहस्थों से बता देते हैं कि भैया इनको ऐसा है, इनका यहाँ ऐसा निवारण कर देना। ये मुनिराजों के आपस में ऐसा वात्सल्य चलता है। बताइए कैसे एक एक मुनिराज के पीछे 48-48 मुनिराज समाधि में स्थित रहते हैं, पूरा संग लग जाता है, एक मुनिराज की समाधि हो सारा संग उसमें पूरे काम में लग जाता है, जैसे कोई अपूर्व अवसर आया हो, सबका एक ही मिशन होता है, कैसे भी करके इन मुनिराज की पूरी जीवन आराधना में गया, पूरा जीवन इन्होंने स्वरूप की आराधना, तप की आराधना, ज्ञान की आराधना, चारित्र की आराधना करी, ये मुनिराज का अंत समय सफल होना चाहिए, कितनी वात्सल्य, कितनी प्रीति, पूरा संग कोई उनको शौच के कार्य में लगा है कि इनकी शौच की क्रिया अच्छे से हो जाए, निर्दोष हो जाए, कोई उनको स्तुतियां उपदेश सुना रहा है, कोई उनके पैर दबा रहा है, कोई सिर कोई हाथ, पूरा संग जैसे बने तैसे उनके परिणाम और उनकी साधना उनकी चर्या ना बिगड़े, ये मुनिराजों का मुनिराजों के प्रति वात्सल्य है। कैसा बराबर, तो ये तो मतलब ये साधर्मियों का आपस में, तो फिर ये मतलब जब मंद कषाई मुनिराजों के आपस में इतनी प्रीति है तो तीव्र कषाई साधर्मियों के तो प्रीति की गाढ़ता होनी चाहिए ना, तो हमारे हाँ। तो और ज्यादा प्रीति हो एक दूसरे से वैसा। तो इसमें जो गाय और बछड़े का उदाहरण पंजीत साहब ने लिया वो इसलिए कहा जाता है कि देखो गाय को बहुत भली भांति पता है कि हम जिस मतलब गाय तो बहुत गाय बहुत शांत मंद कषाई होती है, देखो गाय बन पाना भी बहुत कठिन है भैया, ओके मतलब मंद कषाई त्रियंश हो पाना भी बहुत दुर्लभ है, आप ये समझ लेना, गाय के कषाय की बहुत मंदता होती है, मतलब आप उसको डंडा मार दोगे आप वो घर के सामने स्वयं आ जाती है, आप कोई भोजन दे दो तो अगले दिन फिर आ जाएगी, उसी टाइम पर आ जाएगी, आपने आज शाम को यदि उसे कुछ दिया तो कल शाम को उसी टाइम पर वो वापस आ जाएगी, शायद आप उसको कुछ दोगे और आप नहीं दोगे तो चली जाएगी, एकदम शांत होती है गाय हो भैंस हो ये सारे चीज बहुत मंद कषाई होते हैं, भोले मतलब बोलते ना ये तो गऊ है बहुत सीधा है बराबर, तो गाय को बहुत अच्छे से पता है कि उसका जो बछड़ा है ये उसके कुछ काम नहीं आ पाएगा, इसको कोई और ले जाएगा उसके दूध के लिए ले जाएगा, या अपने खेत पे यदि बैल हुआ तो अपने खेत पर हल जोतवाने ले जाएगा, उसको पता है कि मेरी कोई मदद नहीं कर पाएगा, और करेगा भी तो क्या, मुझे तो बस जब तक ये बड़ा नहीं हो रहा, जब तक ये दूध पीना इसके शरीर अपने आप बलवान नहीं होता तब तक बस इसको दूध पिलाने का काम है, कोई मेरे हाथ पाँव तो दबाएगा नहीं, कोई मेरी रक्षा करेगा नहीं, भोजन मुझे लाकर देगा नहीं, क्या करेगा बताओ, कैसे मदद करेगा, करेगा भी तो तो गाय फिर भी इतनी यत्न से इतनी प्रीति से अपने बच्चे का पूरा भरण पोषण ख्याल करती है, उसको बहुत मतलब आप देखो गाय के बछड़े को ले जाए तो रोती है गाय, कैसे रुदन करती है, उसको कोई निर्वांशित प्रीति है अपने बच्चे से, जब जन्म होता है गाय के बछड़े का तो जैसे ही वो निकलता है तो गाय के बछड़े को बिल्कुल अपनी जीभ से पूरा चाटती है, अलग उसके हाथ पैर, क्योंकि यदि वो नहीं चाटे तो वो खड़ा नहीं हो पाता, तो पहले जैसे उसका जन्म होता है तो उसके पूरे शरीर को तब तक चाटती रहती है, पहले उसको खड़ा करती है जन्म करते ही साथ कि खड़ा हो जाए, फिर जब खड़ा होगा तब उसके स्तनों में लग के दूध पी पाएगा उसके स्तनों में बराबर, तो ये उसकी अकारण प्रीति है, ये गाय का जैसे किसी बिना प्रयोजन के अपने बछड़ों के प्रति प्रेम है, ऐसे साधर्मी का अन्य साधर्मी के प्रति बिना किसी प्रयोजन के, ना तो मेरा नाम हो ना मेरा कुछ हो, लेकिन ये देखो इनके इस धर्म में प्रीति हुई है, अरे कितना अच्छा हो हम इनके साथ बैठकर चर्चाएं करें, कितना अच्छा हम इनके साथ तीर्थ यात्राएं करें, कितना अच्छा हम साथ में पूजन भक्ति आराधना करें, ऐसे एक दूसरे के संग को वे तड़पते हैं कि हमें चलो अभी एक शिविर हो गया अब अगले शिविर में अपन कब मिलेंगे, अब अगली बार भक्ति के लिए कब बैठेंगे, तो ऐसे साधर्मियों में अत्यंत प्रीति गाय के और बछड़े जैसी अकारण बिना किसी प्रयोजन के होती है, ये उनके वात्सल्य है बराबर। ये साधर्म ये सम्यक दृष्टि के सहज में पलता है, तो सम्यक दृष्टि मतलब क्या बोले, जब रावण बहुरूपी विद्या को सिद्ध करने के लिए शांतिनाथ भगवान की स्तुति कर रहा था, बीच युद्ध में सब युद्ध बंद हो गया था, तो रावण ने देखो कितना कितना विद्वान, रावण ने बोला देखो हम जिन देव की भक्ति आराधना में लगे हैं, अब इतने काल में जब तक हम जिन देव की भक्ति है, हमारे राज्य से किसी पर भी आक्रमण नहीं होगा, कोई भी हमारा सैनिक किसी भी शत्रु के ऊपर शस्त्र नहीं उठाएगा, हमारे राज्य में पूरी शांति रहनी चाहिए, हम जिन देव की आराधना करें और हमारे अनुचर हमारे सैनिक हमारे नौकर हिंसा करें ये कोई बात नहीं होती। तो रावण ने स्पष्ट निर्देश दिया और मंदोदरी रानी उसकी बहुत बड़ी पंडिता बहुत बड़ी विदुषी वो एकदम उसने बोला ठीक है और उसने पूरा संभाला। तो इस बीच लक्ष्मण, अब लक्ष्मण की तो तीव्र कचा है, उसको तो नरक ही जाना है ना बाद में, तो उसको लगा अच्छा मौका है, अच्छा मौका है, अपन अभी रावण कुछ करेगा नहीं तो अपन इसके लंका में घुसकर अब उपद्रव कर सकते हैं। तो लक्ष्मण इनके साथ ये सारी जो भी थे इन सबके साथ अंदर घुसा और देखो कितना मंदोदरी रानी का संचालन कि यहाँ पर इन लोग अंदर तक घुसाए लक्ष्मण लोग और तब भी किसी सैनिक ने एक तलवार नहीं उठाई कि नहीं हमारे राजा भी धर्म कार्य में लगे हुए हैं हम ये कार्य नहीं करेंगे। और फिर जैसी राम को पता पड़ा कि ऐसा कार्य हो रहा है तो राम ने फिर जो लक्ष्मण को फटकार लगाई कि अरे तुम्हें ऐसा निंदनीय कार्य करते हुए शर्म भी नहीं आई, कोई भगवान की भक्ति में लगा और तुम ऐसा उपद्रव कर रहे हो, मतलब आप समझना क्या कैसा रावण के, यदि आप पद्म पुराण पढ़े तो रावण की मतलब रावण का जो पहले मतलब राम का जन्म तो बहुत टाइम बाद हुआ, रावण था कब से तो पद्म पुराण की शुरुआत रावण से ही होती है, पहला जो उसका पार्ट है पूरा रावण के ऊपर है बराबर। तो कैसी उसकी भक्ति, बहुत बड़ा विनयशील भक्तिवान था रावण, वो तो अब एक अपराध हुआ और वो दैव नहीं था, प्रति नारायण है तो उसको मरना ही है नारायण के हाथों, क्या करे
हाँ।
वो कार्य होना ही था, लेकिन बहुत सम्यक दृष्टि महापुरुष थे ये सब, बहुत धर्म के विवेकी, साधर्मियों का कैसा मतलब बताओ जिसका विभीषण जैसा भाई हो, जिसके मतलब कैलाश में जाके जो भक्ति करता हो, रावण सामान्य जीव थोड़ी था, पूछता हो कि महाराज केवली के सामने कि मैं व्रत नहीं ले पाता, मुझे ऐसे परिणाम होते हैं कि मैं ये जीत के आऊं मैं वो जीत के आऊं, तो केवली बोलते हैं कि भैया तुम्हें अभी त्रिकंडी बनना है तुमसे व्रत लेना नहीं हो पाएगा, तो मतलब वो लेना तो चाह रहा है अब परिणाम ही नहीं बनते उसके क्या करे, इसलिए होनहार भवितव्यता बहुत प्रबल है और हम सबके भी भवितव्यता पक्की है कि हमको जिनवाणी की बातें रुचिकर लगती हैं, तो हमको थोड़ा सा हाथ मिला है हम पूरा अच्छे से पकड़ ले जिनवाणी का, गुरुदेव श्री का, ज्ञानियों का, और हम बहुत इस तत्व ज्ञान के इस मधुरम तालाब में कूद पड़े और बहुत बहुत नहाए, ये साधर्मियों का काम होगा, ये आयोजन होते रहते हैं पंचकल्याणक आदि शिविर आदि, हम सबको इसमें जाते रहना चाहिए, विशुद्धि विशेष होती है साधर्मियों से मिलना होता है, लेकिन याद रहे कि वो पंचकल्याणक में तत्व ज्ञान की प्रमुखता हो, तत्व चर्चा की प्रमुखता हो। हम लोग के दादाजी तो ऐसा बताते थे कि सोनगढ़ जाते थे तो सुबह गुरुदेव श्री का प्रवचन, अब उसके बाद जहाँ चल रहे जिस गली में पहुंच जाए उस समय तत्व चर्चाएं, तत्व चर्चाएं, सब लोग बस इसी, वहां का पूरा माहौल ये रहता था कि
हाँ।
मतलब प्रवचन से छूटे तो अरे आज गुरुदेव ने ऐसा बताया इसका क्या मतलब हुआ, कैसा पूरे समय तत्व चर्चा, आप खाने के लिए बैठे तो खाने की तत्व चर्चा, खाने के पहले तत्व चर्चा, खाने के पूरा मतलब कैसा कैसा मतलब गुरुदेव श्री ने बिल्कुल कैसा जादू किया होगा, सम्मोहन किया होगा कि हर कोई तत्व विचार में ही मतलब और कोई किसी को बात ही नहीं आती थी
हाँ।
क्या साधर्मियों का कैसा कैसे कैसे विद्वान फिर पहुंचते थे वहां युगल बाबू जी कैसे कैसे गजब का, तो ये साधर्मी ही ऐसा वात्सल्य के अपने वात्सल्य के कारण ऐसा माहौल बना पाते हैं, ये वात्सल्य अंग हुआ। अब अगला आखिरी अंग कर निज जिन धर्म दिपावे, जिन धर्म दिपावे मतलब जिन धर्म की शोभा में मतलब दीप होता है वह प्रज्वलित होता है। दिपावे मतलब उसकी शोभा को बढ़ाना फैलाना। तो वह इन सात अंगों का यदि अनुपालन करेगा, निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा अमूढ़ दृष्टि उपगूहन स्तुतिकरण वात्सल्य, यदि कोई जीवन सात धर्मों का अनुचरण करता है तो अपने आप उसके जीवन से उसके चरित्र से प्रभावना होती ही है। तो पहला तो ये कि वह स्वयं इन अंगों का अनुचरण करे तो जिन धर्म की प्रभावना करे, और दूसरा विशेष अपने विचारों से अपने आचरण से जगत में अन्य जीवों को प्रभावित करे, स्वयं आराधना करे धर्म को अपनावे, तो उससे जगत में जिन धर्म प्रशंसनीय होता है तो यह जिन धर्म की प्रभावना वह करे। तो प्रभावना का अंग सम्यक दृष्टि के होता है। क्या जैन धर्म की शोभा में वृद्धि करे सो प्रभावना अंग है, और इन गुणते विपरीत दोष वसु तिनको सतत खिपावे, कि ये आठ गुण है आठ अंग है इनका उल्टा हो जाना शंका हो जाना आकांक्षा हो जाना ये दोष है तो इनको सतत खिपाता है। तो जो सम्यक दृष्टि है वह आठ अंगों का अनुपालन करता है और आठ दोषों को निरंतर उनके उत्पन्न न होने पाए इनके प्रति सावधान रहता है। तो अभी प्रभावना की हम बात करते हैं थोड़ा। प्रभावना अंग देखिए अभी के समय में बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी बन गई है। अब तो मतलब पहले जहाँ बोला जाता था कि जैन लोग बहुत प्रमाणिक होते हैं, अरे ये जैन है ये नहीं कर पाएगा कुछ भी ऐसा करके बोला जाता था, मतलब जैनों की बहुत पहुंच थी बहुत कुछ परख थी। लेकिन अभी थोड़े काल में अब जैनों को अलग दृष्टि से देखा जाने लगा है, राइट। मतलब बहुत सारी विकृतियां आ गई है हमारे बीच न्याय में नीति में धोखाधड़ी में व्यसनों में शराब में जुए में इन सब में। तो अब लोग ऐसे कहते हैं तो जैन भी कर लेते हैं तुम कर लो बराबर। तो अभी अब प्रभाव में इसके कारण बहुत हो रही है। तो हम क्या कर पाएंगे कि हमें इतना करना कि हमारा जो आचरण हो वह समीचीन जैन धर्म से मिलता हो, हमारा जीवन न्याय नीति से सजा हो, हमारा भोजन भक्ष्य हो, और हम किसी को अकारण परेशान ना करें, हम सबसे मधुर वचन बोले मीठे वचन बोले और अपने तत्व विचार अपनी आराधना में लगे रहे। इतने करने से ही आपकी सुगंध आपकी आचरण की सुगंध ये फैलने लगेगी और उससे लोग प्रभावित होते जाएंगे। क्या प्रभावना करने के लिए बड़े बड़े पैम्फलेट छपवाकर फ्लैग छपवाकर होर्डिंग्स लगाने से प्रभावना नहीं होती, वो एडवर्टाइजमेंट होता है, राइट। प्रभावना और एडवर्टाइजमेंट में अंतर है। एडवर्टाइजमेंट सामने वाले को छोड़ता है इस ऑप्शन पर कि आप इसको अच्छा मान सकते हो या बुरा मान सकते हो। प्रभावना में अच्छे बुरे का ऑप्शन नहीं है। प्रभावना मतलब जो प्रभावित करे मतलब आकर्षित करे, जिसमें ऑप्शन भी रहे कि नहीं अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। नहीं ये तो कोई अपूर्व चीज है, अरे इनका सदाचरण कितना अच्छा है, इनका जीवन कितना अच्छा है, कितना मधुर बोलते हैं, इनको हमने कभी गुस्से में नाराज नहीं देखा, इनको कभी हमने बाहर का पानी पीते हुए नहीं देखा, कभी हमने इनको किसी से झगड़ते, अपना काम करते हैं अच्छी बातें करते हैं सभाओं में करते हैं विद्वानों के बीच बैठते हैं, ये भी तो एक आचरण है। और ये जैसा प्रभावित करता है उससे आपकी प्रामाणिकता बनती है, और आपकी प्रामाणिकता बनेगी मतलब जिन धर्म की प्रामाणिकता बनेगी, कि जिन धर्म आपसे हटके तो कुछ और है नहीं, आप जिस वृत्ति को करें वही जिन धर्म लोक मानेगा। तो हम अब जो भी अपने आचरण करें, हम जो कुछ भी क्रियाएं करें, हम ये मानकर करें कि हमसे जिन धर्म जुड़ा हुआ है, सबसे पहली बात तो हमने देखा था वहां पर, पिछली पिछली बारी हमने चर्चा करी थी कि अरे जिन धर्म हमसे क्या चलेगा, हम जिन धर्म से चलते हैं, जिन धर्म तो सारे कालों में सदा काल रहने वाला है, उसको चलाने वाले बनाने वाले हम कौन है? वो तो अनादि अनंत एक चक्र में जिन धर्म और उसके मानने वाले चलते रहेंगे। लेकिन उसका दूसरा पक्ष ये है कि इस जगत में हम जिन धर्म के मानने वाले कहे जाते हैं, और सारे जगत को तीर्थंकर महादेव हमारे तो दिखेंगे नहीं, मुनिराज दिखेंगे नहीं, शास्त्रों का पढ़ना होगा नहीं, तो वे हमारे जीवन से ही, हमारी प्रामाणिकता से ही हमारा आकलन करेंगे। जैसे किसी अच्छे कॉलेज का आकलन उसके एलुमनस उसके कैसे है, उसके जो निकले हुए बच्चे हैं वो कैसा अपने लाइफ में कर रहे हैं, वो किन कंपनीज में है, क्या उनकी उन्होंने क्या शोध करा, क्या उन्होंने कंपनीज खोली, उसको देखकर बोलते हैं ये वाले कॉलेज से ये निकला, मतलब ये कॉलेज बहुत अच्छा होगा, राइट? तो ऐसे ही जिन धर्म को मानने वाले, जिन धर्म के उपासक हम सभी हैं, तो जिन धर्म की प्रामाणिकता भी हमको देखकर आएगी, तो हमारे जीवन में हम पाप आदि क्रियाओं का बिल्कुल त्यागी हो। और देखो यहाँ तक उपदेश है, यदि हमसे कुछ क्रियाएं नहीं छूटती हो तो हम खुले में तो उन क्रियाओं का अवगाहन ना करें, हम ग्लानी से करें, शर्म से करें, छिपकर करें। छिपकर करना नहीं करना उसकी बात नहीं है, बराबर जैसे हमसे कोई चीज नहीं छूटती हो तो इसका ये मतलब नहीं कि हम चौराहे पर खड़े होकर वो चीज करें। अरे हमसे नहीं छूट पा रही, ये हमारी कमी है। हम जगत को क्यों बताएं कि हमसे ये नहीं छूट पा रही है? आपको बात समझ में आ रही है क्या? कोई हमारे अंदर कमी हो? जैसे मैं रात्रि भोजन नहीं छोड़ पा रहा,
धर्म की खराब नाम होता है, वो लोग बोलेंगे
जैसे मैं रात्रि भोजन नहीं छोड़ पा रहा, ठीक है, अब कहीं पर मैं गया शादी में, वहां रात्रि में भोजन हो रहा है, तो मैं छोड़ नहीं पा रहा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहां सबके सामने रात में भोजन करूं। मैं जैनी हूँ, जैनियों की पहचान के मैं रात में नहीं खाते। कल को समाज के सामने मुझे रात में खाता देखेंगे तो क्या बोलेंगे? तो मैं घर पर वापस आके खा लूं ना अकेले चुपके से, जो भी है। लेकिन इतना क्यों, मतलब यह रात में खाने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन ऐसी स्वच्छंदता तो नहीं हो कि हम सबके सामने भी वो कार्य करके ना घबराए, बराबर? तो ठीक है, हमसे जो नहीं हो पाता हम नहीं करें, हम अकेले में चुपके से कर ले, क्योंकि चुपके से करोगे तो मतलब शर्म तो है, तभी चुपके से कर रहे हो, सबके सामने करने की शर्म है, तो एक दिन ये शर्म आपको छुड़वा देगी। लेकिन जब आप सबके सामने करते रहोगे वह शर्म स्वच्छंदता का रूप ले लेगी, और फिर आप किसी के समझाए भी नहीं करोगे, शर्म तो अब लगनी बंद हो गई यार, बराबर? तो ये सारे, मतलब ठीक है आपको ये मायाचारी लग सकती कि भाई जो अकेले में छुप छुप के करते हो वो सबके सामने कर दो, कि नहीं बात होती तो कोई बात नहीं चल जाता, लेकिन अभी किसकी बात है? जैसे कि अभी भी किसी के घर में शराब आदि नहीं पी जाते हो, ऐसी कई फैमिलीज होती है नॉन जैन जिनके यहाँ शराब नहीं पी जाती, बराबर? अब उनके यहाँ के बच्चे पीते हो तो छुप छुप के ही तो पीते हैं, वो सबके सामने तो नहीं पीते, उनको पता रहे नहीं हमारे मम्मी पापा का नाम खराब होगा, तो वो मायाचारी। अब जैसे तो ऐसे ही हमारे जैन धर्म की यहाँ हमारे पास जागीर है, तो हमारे से ही तो हमारी पूरी परंपरा का नाम है। तो जिनसे यदि पाप नहीं छूटते हो, अनर्गल प्रवृत्तियां नहीं छूटती हो, तो वे प्रवृत्तियां भी सबके सामने तो नहीं करनी, ये तो हमको हमारी जिम्मेदारी से करना कि नहीं ये कुछ भी होता हो तो जब तक नहीं छूटता हो अकेले में करे, और जैसे जब अकेले में करोगे तो कब तक करोगे, छूट जाएगा, बराबर? जैसे बने तैसे, इसके लिए हम अपने आप को इतना व्यस्त कर रहे। हाँ हाँ,
समीचीन का अर्थ क्या हुआ?
समीचीन मतलब जैसा है वैसा।
ओके ओके,
समीचीन जैन धर्म, जैसा जैसा ऑथेंटिक
ऑथेंटिक,
क्योंकि उसमें मिलावट तो बहुत सारी हो जाती है। समीचीन मतलब परंपरा से जैसा चला आया, समीचीन जैन धर्म मतलब जो कुंद कुंद देव की आमनाएं में, वीर प्रभु की आमनाएं में जो समीचीन चला आया वो जैन धर्म, उसका अनुपालन। समीचीन आचरण मतलब वैसा जैसे कि आजकल ये हो गया है कि नहीं चौथे काल की क्रिया, चौथे काल के साधर्मी, ये सब झूठी बातें हैं। ये सब कोई बातें नहीं करने की होती कि चौथे काल का आचरण है, चौथे काल के मुनिराज जैसे हैं, चौथे काल के साधर्मी है, चौथा काल आ गया, ऐसा नहीं है। क्यों? चौथे काल में चरणा नियोग अलग होता होगा और पांचवे काल में अलग होता होगा। चौथे काल के 28 मूल गुण अलग होते होंगे, पांचवे काल के अलग होते होंगे। मतलब कुंद कुंद आचार्य देव पांचवे काल के तो छोटे आचार्य हुए और चौथे काल के कोई और आचार्य वो बड़े आचार्य हुए, ऐसा थोड़ी। चौथे काल के साधर्मी अलग होते होंगे और पांचवे काल के अलग होते होंगे, ऐसा नहीं है। समीचीन जैसा चौथे काल में होता था वैसा ही पांचवे काल में, तो उसकी ऑथेंटिसिटी काल के कारण नहीं होगी, उसकी ऑथेंटिसिटी वो आचरण के कारण है। आप पांचवे काल में भी वह आचरण करो तो प्रशंसनीय है और चौथे काल में भी हीन आचरण करो तो निंदनीय है। तो इसको चल, आजकल ऐसा हो गया भी पांचवे काल में भी चौथे काल जैसे चर्या करने वाले आचार्य उनके जैसे साधर्मी, ये इसका क्या मतलब हुआ? मतलब पांचवे काल में जो आचार्य हुए समंत भद्राचार्य जैसे, अकलंग देव आचार्य जैसे, वे हीन आचरण वाले आचार्य थे?
नहीं।
क्या मतलब है इसका? ये आचरण काल से नहीं होता। छठवे काल में भी यदि कोई तीन कषाय के चौकड़ी के अभाव वाली मुनि दीक्षा धारण करे तो हमारे लिए वंदनीय है। अब वो नहीं कर पाता तो हम क्या करें? किसी भी काल में हो, मुनि दशा अंतरंग में तीन कषाय के अभाव वाली और बहिरंग में 28 मूल गुण के अखंडित पालन करने वाली होती है, किसी काल की हो, हमारे लिए वह वंदनीय है। तो यदि उस काल में वे मुनिराज हैं और ऐसी दशा में चलते हैं तो हम उनके चरणों की धूल हैं, उनके चरणों के दासानुदास हैं। और यदि वे चौथे काल में भी हैं, तीर्थंकर के समवशरण में राजते हो लेकिन इस आचरण से भ्रष्ट हो तो वे हमारे लिए वंदनीय नहीं है। ये है
बराबर।
तो प्रभावना उस समीचीन आचरण से है, किस काल में है, किसकी संगति में है, उससे नहीं। आदिनाथ मुनिराज के साथ इतने सारे राजाओं ने दीक्षा ली, सबने समीचीन आचरण नहीं किया, सबने अप्रभावना करी। इंद्र ने आके आकाशवाणी करी कि छोड़ दो, अरे हम तो आदिनाथ मुनिराज के साथ दीक्षित हुए हैं, हम कैसे? नहीं नहीं, आदिनाथ मुनिराज समीचीन आचरण कर रहे हैं, तुम्हें पता हो तो करो नहीं तो त्याग दो, क्योंकि उससे अप्रभावना होगी।
बराबर।
ये सब वज्रदंत चक्रवर्ती का 12 मासा लिखा गया, तो उन्होंने लिखा कि भैया चलो हम दीक्षा लेंगे और अपने पुत्रों को बुलाया भैया कि देखो तुम राज्य संभालो, कुल आपने की रीति चालो, राजनीति संभाले के। आप लोगों ने पढ़ा वज्रदंत चक्रवर्ती का 12 मासा? पंडित मैन सुखदास जी ने लिखा है, जिन्होंने वो माता है वैराग्य की लिखी ना, जी मैं चेतन चिंतन ये वाली 12 भावना जिसने लिखी है, उन्होंने ही लिखा हुआ है, बहुत सुंदर है। पहले के लोग बहुत पढ़ते थे ये, अभी तो धीरे धीरे बंद हो गया ये सब। 12 मासा कहलाता है, ऐसी राजल का 12 मासा है, राजल नेमिनाथ भगवान जी के 12 मासा में कैसा चिंतवन करती है, सब पहले बहुत पढ़े जाते थे। तो उसमें वे बोलते हैं, उनने क्या किया है कि देखो उन्होंने पुत्रों को बुलाया, बोला भैया देखो हम तो दीक्षा लेंगे और तुम लोग अब राज्य संभालो, जैसे कि हमारे पूर्वजों ने किया, वे अपने पुत्रों को राज्य देते गए और स्वयं दीक्षा लेके चले गए। तो कुल आपने की रीत चालो, तुम अपने कुल की रीति चालो, राजनीति का विचार करके कि भैया देखो अब हमारी उम्र हो गई, हम दीक्षा लेके जा रहे हैं। तो उनके पुत्र बोलते हैं कि भैया आप बताओ कि तुम ये राज्य को छोड़ के जाते हो पिताजी, तो उसको अच्छा मानकर छोड़ के जाते हो कि बुरा मानकर छोड़ के जाते हो? तो वे बोलते बुरा मानकर। तो तुम हमारे पिता हो कि शत्रु हो? मिता कोई अपने पुत्र को बुरी वस्तु देता है तो वो बोलते कि नहीं, तो फिर पुत्र बोलते कि तुम्हारी समझ सोई समझ हमारी, जैसी आपने सोचा है इस राज्य को दुख रूप ऐसी हम भी इसको दुख रूप मानते हैं और हम भी राज्य नहीं लेंगे, हम भी दीक्षा लेंगे। बराबर। तो उसमें अब 12 महीने होते ना, 12 मासा, तो 12 महीने होंगे तो हर एक महीने पर जंगल में क्या क्या दुख आते हैं, तो वो अपने पुत्रों को समझाएंगे बेटा ये वाला महीना आएगा फिर तुमको बहुत दिक्कत होगी, इसमें मच्छर बहुत बढ़ जाएंगे, इसमें प्यास बहुत लगेगी और तुम नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम तो यहाँ पर आराम से राज्य भोगना, जब तुम्हारी उम्र हो तब तुम ये दीक्षा लेना। तो वो यहाँ एक एक उम्र एक एक महीने का वो बताते कि कितनी कठिनता आएगी।
अच्छा अच्छा।
एक जैसे कि जब बारिश का महीना आएगा तो सारे विद्याधर आदि जंगल में आके भोग भोगेंगे, तुम उनको देख के जल जाओगे कि भैया देखो ये लोग ऐसे भोग भोग रहे हैं, और निदान करोगे, इसलिए तुम यहाँ पर आराम से भोग भोगो ना। तो वे वहाँ उनको बताते कि तुम दीक्षा मत लो, इसके लिए प्रेरित करते हैं। और वहाँ उनके पुत्र बताते हैं कि भैया पिताजी आप कैसी बात कर रहे हो, हम उन भोगों को देखेंगे जो शूकरों की विष्ठा के जैसे हैं। तो यहाँ वो बच्चे अपने पिता को समझाते कि आप हमें कैसे झूठे तर्क दे रहे हो, हम तो जो आपने सोचा है उसी मार्ग पे चलेंगे। और आखिरी में पिताजी हार जाते हैं और फिर अपने पौत्र को, उनके बड़े पुत्र के बेटे जो गर्भ में रहता है उसको राज्य दे के जाते हैं। बहुत सुंदर है। तो उसमें एक जगह वो बोलते हैं कि देखो तुम जब जंगल में जाओगे तो तुमसे 22 परिषद सहनी करते बनेंगे, तुम लोग तो सुकुमार हो, चक्रवर्ती के बेटे हो, तुम तो हमेशा लाड़ प्यार में रहे हो, कभी जमीन पर पैर तुमने नंगे पैर रखा नहीं, 22 परिषद सहन नहीं कर पाओगे, और तुम सहन नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, लेकिन देखो इस जगत में जैन धर्म की हंसी होगी, तुम इसलिए हंसी करने के लिए जंगल मत जाओ। तो वे पुत्र फिर वहां उत्तर देते हैं भगवान, हे पिताजी जिन धर्म की हंसी तब होगी जब हम बिना जाने उसका आचरण को ग्रहण कर लेंगे, हमें तो अंतरंग में अपना अनंत शक्ति संपन्न आत्मा दिखता है, हम जब उसकी आराधना करेंगे तो छोटे मोटे परिचय से क्यों नहीं जीते जाएंगे, ये तो यूं ही जीत लिए जाएंगे, तो हम तो तुमरी समझ सही समझ हमरी, तो हम भी आपके जैसी दीक्षा लेंगे। तो वहां पर देखो उन्होंने बच्चों को उपदेश दिया कि देखो ये हंसी खेल नहीं, तुम तो ले लोगे दीक्षा, परिचय नहीं सहन होंगे तो हंसी होगी जैन धर्म की, अब प्रभावना होगी, तो उसका विचार करो। कितना विवेक ज्ञानियों को एक एक आचरण का होता है कि देखो ये होगा तो ऐसी हंसी होगी, हमको ये कार्य नहीं करना, धर्म की हंसी होगी हमारी तो ठीक है। तो ऐसे हमको अपनी एक एक वृत्ति को इतना नपा तुला करना कि हमारी वृत्ति से ये देखो ये लोग होते हैं स्वाध्याय करने वाले, ये देखो इन्होंने कुंदकुंद आचार्य को पढ़ा, इन्होंने जिन देश के दर्शन किए, ऐसा हमारी एक ही वृत्ति जीवन से लगना चाहिए, फिर हम ज्यादा बड़ा आयोजन नहीं कर पाएंगे तो भी हमसे जैसी प्रभावना होगी वह लाखों करोड़ों रुपयों के आयोजन करके भी उतनी प्रभावना नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक आराधक जीव से जितनी प्रभावना होती है उतनी सामान्य जीव से नहीं हो पाती, बड़े बड़े आयोजनों में नहीं हो पाती। हम सभी के जीवन में ऐसा सुंदर प्रभाव ना हो सकते, हम सब बहुत एक एक वृत्ति को हम जैन धर्म की गरिमा में उसको पिरो दें और अपने जीवन को ऐसे ही सात्विक आर्य पुरुषों के आचरण वाला बनाए। इसी मंगल भावना से बहुत समय हो गया आज, कभी होगा तो हम ये पढ़ेंगे वैराग्य भावना भी और 12 मास भी, बहुत सुंदर है, बहुत ही मतलब आप देखो कितना सुंदर संवाद और उसमें कैसी प्रेरणाएं, कैसा पिता अपने पुत्रों को परीक्षा कर रहा है कि देखो हम समझ तो ले कि दीक्षा के पात्र है कि नहीं है, और कैसे पुत्र अपनी दीक्षा की पात्रता की परीक्षा दे रहे हैं, बहुत सुंदर है। चलिए ये 8 अंग होते हैं हमारे जीवन में, 8 अंग बहुत जल्दी प्रकट हो और हम सभी ऐसा ही उज्जवल जीवन को जिए सिंगल भावना से। हमारी स्तुति
कोई साथ साथ में समझा तो बहुत बढ़िया, अच्छा ज्यादा समझ में आता,
क्योंकि ये इसकी भाषा कई दफा बहुत नहीं समझ, भाषा थोड़ी पुरानी है, बराबर ठीक है, हम लोग कभी यदि आगे प्रसंग निकलेगा तो फिर इसकी चर्चा करेंगे। चलिए अभी जनवाणी स्थिति निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार उसके लिए चिन वाणी माँ को वंदना शत पार है उसके लिए चिन वाणी माँ को वंदना शत पार है।